سورة توبة آیت نمبر 111، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، وعدہ کیا اللہ نے اس پر پختہ وعدہ تورات اور انجیل میں اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ سے؟ اے ایمان والو، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی نگہبانی کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ دو آیات ہیں لیکن ایک پوری بزنس ڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ان آیات میں ایمان والوں کو ایک ایسی تجارت کی دعوت دی ہے کہ جس کو سنتے ہی ہر صاحب نظر شخص کی رال ٹپکنے لگے، اور ہر وہ شخص جو اپنی اس زندگی اور اپنے اس مال کی صحیح قیمت لگوانا چاہے تو فوراً ہی ان باتوں کو سن کر بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مرضی معلوم کیے، بغیر کسی کے منع کیے یا کسی کو کانوں کان خبر دیے اس ایگریمنٹ پر سائن کرے گا۔ بہت ہی موٹیویشنل آیات ہیں۔ اگر ہم ان کو آیات کے شان نزول کے راتے سے پہلے اگر دیکھ لیں تو سورت توبہ تو مدنی سورت ہے، لیکن ان دو آیات یعنی آیت 111 اور 112 ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکی آیات ہیں، اور ابتدا میں یہ بات ہو چکی کہ کسی بھی سورت کو مکی کب کہا جاتا ہے؟ جب اس کا بیشتر حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہو۔ لیکن ضروری نہیں کہ کوئی یہ سورت مکی ہے تو اس کی ہر آیت ہی مکی ہو۔ بالکل اسی طرح سورت توبہ مدنی سورت ہے، اور پیچھے آگے آیات جو چل رہی ہیں اس کا تعلق مدینہ میں آنے کے بعد کے حالات سے ہے۔ لیکن ان دو آیات کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئیں، جب مدینہ سے 70 مرد اور 2 عورتیں مکہ آئیں، حج کے ارادے سے آئے، لیکن انہوں نے عقبہ نام کی گھاٹی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیعت کی۔ اس وقت ان تفصیلات کی ضرورت نہیں جو سیرت کی کتابوں میں اور سیرت کے اور تفسیر کے سیشنز میں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں بس اگر ہلکی سی بات سمجھنے کے لیے ہم اس بات کو دہرا لیں تو انشاءاللہ کئی سننے والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال گزارنے کے قریب تھے، اور اپنوں نے آپ کی قدر نہ کی، رشتہ دار تو تھے لیکن آپ کے دین کے رشتے میں نہ بن سکے، مخالفت کا دریا بہہ رہا تھا اور آپ کی جان لینے کی تیاریاں بھی ہونے والی تھیں۔ کیسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے راستے دکھانے شروع کیے، اور حج کے لیے آنے والے لوگ مدینہ سے جب آئے، کانوں میں بات پڑ گئی کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، कोई अच्छा कह के बदनाम करे या कोई अच्छी बात कहे, हक हक है, दबके नहीं रहता। हक की शान ही यह है कि वो खुल जाता है। लिहाजा मदीना में खबर पहुंच गई कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया हुआ है कि जिसकी बात दिलों को मोह लेती है और बात बिल्कुल हक कहता है, अपने से ज़्यादा अल्लाह की बात करता है और लोगों को उनकी ज़िंदगी का मकसद सुझाता है। चुनाचे जब ये लोग मक्का से मदीना आए तो अल्लाह के नबी सल्लम से खुफिया मुलाकात हुई। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन हालात में यह आयत नाजिल हो रही है वो हालात क्या थे। उस वक़्त इस्लाम लोगों की नज़रों में एक बहुत बड़ा जुर्म था और इस्लाम पे जितने भी इल्ज़ाम आज के दौर में लगते हैं इससे कई गुना ज़्यादा इल्ज़ाम उस वक़्त लग रहे होंगे। तो कहते हैं कि उस वक्त जब वो लोग पूरे दिल से तैयार थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम हम हर कीमत पर आपको यहाँ से ले जाएंगे। जब मुतालबा इतना बड़ा किया और बाद दफ़ा होता कि एक इंसान जज्बात के गलबे में मगलूब होकर कुछ बातें ऐसी कह देता है कि जिसके लिए उसको उस वक़्त अंदाज़ा नहीं होता कि बाद में इस दावे की क्या दलील देनी पड़ेगी। बात सिर्फ मफहूम समझाने के लिए, मफहूम यानी टॉपिक से बिल्कुल हट जाएगी लेकिन बात वाजे कभी हो जाती है कि अमूमन शादी की उम्र जब करीब होती है, 13, 14, 15 साल की उम्र के बाद जब लड़कियां बालिग हो चुकी होती हैं तो उनके दिल में शादी का लफ्ज़ एक बड़ा ही फैंटसी लफ्ज़ बन चुका होता है और माँ बाप भी ख्वाब देखते हैं, बच्चियों के भी ख्वाहिशात होती हैं। लेकिन अगर उस वक्त उनको पता हो कि शादी के बाद की ज़िंदगी की जिम्मेदारियां और उसके अंदर कितना कुछ है तो मेरा ख्याल है कि आधी लड़कियां उस वक्त शादी की ख्वाहिश छोड़ दें। हाँ, लेकिन हकीकत है कि ख्वाब देखना और चीज़ होती है, लेकिन अपने ख्वाबों को हकीकत के रंग में ढलता देखना, इसके लिए अमली जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है। मदीना से आने वाले तो इस वक्त जोश और जज्बात में थे लेकिन अल्लाह के नबी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये दावत कोई आसान दावत नहीं है, ये फूलों का रास्ता नहीं है, इसके रास्ते में कांटे भी आएंगे और मुखालफतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी खुलेगा। तो अल्लाह के नबी चाहते थे कि बात पूरी तरह खुल के सामने आ जाए, कोई अंधेरे में न रहे, और यही बेहतरीन तरीका होता है कि जब भी कभी कोई किसी बात का दावा करे तो फिर उसको सारे हालात खोल के बताए जाएँ। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने तो जो दो टोक बातें की और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो अल्लाह के नबी के चचा थे और अभी इस्लाम पे भी नहीं थे, उन्होंने भी दो टोक बात कर दी कि मदीना वालों सोच लो, हम दुश्मन हैं इस शख्स के लेकिन हमने इसको ऐसे दिल से नहीं उतारा हुआ, ये हमारे दिलों में बसता है, ये हमारा भतीजा है, तुम इसको ले जाओ और जाके छोड़ दो तो फिर बाद में इसकी जान को ख़तरा हो तो याद रखो कि हम ही होंगे तुम्हारे सामने इसका कसास लेने वाले। लेकिन उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें। तो ऐसे मौके पे आयत 111 और 112 नाजिल करके अल्लाह ताला ने भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को खोल के बता दिया कि देख लो ये तिजारत कर रहे हो तो तुमने बात तो बहुत अच्छी की है, तुम्हारे लिए खुशखबरियां तो बहुत सारी हैं लेकिन ये जान और माल की कीमत पे होगा। तो आइए जरा आयात को इस नाते से देखते हैं। लेकिन इन आयात को सुनकर बैत अकबा वालों का हाल क्या था, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम हमें ये सौदा मंजूर है, हम इस तिजारत को करते हैं, हम आपकी हिफाजत अपनी औरतों से भी ज़्यादा करेंगे, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बच्चों से ज़्यादा आपकी हिफाजत करेंगे। और इस तरीके से वो ये कमिटमेंट कर रहे थे कि अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि अभी इस बात की खबर ना देना किसी को, लेकिन शैतान ने ये बातें सुन ली। ये सीरत के खेल हैं, जो आप जाके सीरत की कहानी है सुने तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस वक्त भी शैतान कितने गुस्से में था कि ये क्या करके चल पड़े। तो बहरहाल इसके बाद तो बस हालात ये हो गए थे कि घर घर अल्लाह के नबी सल्लम की खबर फैलने लगी और मदीना में अल्लाह के नबी के चर्चे आपके वहाँ पहुँचने से पहले ही हो गए। और शुरू में तो कहते हैं कि 3 हजरात से बैत ली गई, जो पहली बैत थी सन 1190 में, फिर उसके बाद 6 लोग और मुसलमान हुए, लेकिन इस बैत में तो माशाल्लाह इतने लोग आ चुके थे कि जिनके जरिए फिर अल्लाह के नबी ने मुसअब बिन उमैर और साद बिन जरारा इन दोनों को भेजा। साद बिन जरारा बेसिकली उन्होंने मदीना से उनको मीट किया था, लेकिन मुसअब बिन उमैर को ये फख्र हासिल है कि वो मदीना के पहले उस्ताद बनकर मदीना में गए, उन्होंने लोगों को कुरान पाक बताना पढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हीं की तबलीग का नतीजा था कि अल्लाह के नबी सल्लम के हिजरत करके मदीना आने से पहले ही घर घर में लोग तैयार हो चुके थे और अल्लाह के नबी के इस्तकबाल के लिए मदीना के बिल्कुल किनारों पे आ चुके थे। तो जब ये हालात हुए तो تو انہوں نے پھر اس کو کیسے نبھایا؟ اس کے لیے آپ سیرت کا مدنی طور پڑھ لیں کہ پھر جان بھی گئی تو گئی، مال بھی گیا گیا، اور بچوں کی بھی قربانیاں دینی پڑی تو دی، لیکن سودا بڑا نفع کا تھا۔ تو اب ذرا یہ ٹیک شان نزول کی بات سمجھنے کے بعد ہم ذرا اس کو اپنے اوپر بھی لے کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب نہ تو یہاں مکہ والے موجود ہیں نہ مدینہ والے، اور قرآن پاک کی آیات کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس کا ایک ٹیکسٹ کے اعتبار سے مفہوم ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں کبھی بوجھل بھی ہوتی ہیں سننے والوں کو، کیا یاد رکھیں، کب کی باتیں، کس نے کہی تھی، کون بیت عقبا، کون سی یہ، لیکن میں پھر بھی اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ یہ بتانی چاہیے، ہمیں عام لوگوں کو بھی بتانی چاہیے، تاکہ کوئی من مانی تفسیریں نہ کر لے۔ ہم سیرت سے کاٹ کے اگر قرآن کی تفسیر کریں گے تو من مانی باتیں ہوں گی، کہنے والے کے دل کے جذبات اس میں آ جائیں گے، سننے والے اپنی مرضی کا رنگ پہنائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک عمومی، ایک خاص تفسیر ہوتی ہے۔ اب ہم اس آیت کی ذرا عمومی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بدلے میں کیا ہے، بین لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ اب دیکھیے کہ جہاں لفظ اشترا آتا ہے ساتھ ہی خرید و فروخت کا تصور آتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ ابھی تک جہاں بھی گزرا ہے اچھے معنوں میں نہیں گزرا، جیسے بالکل سورۃ بقرہ ہی میں دوسرے ہی رکوع میں منافقین کے تذکرے میں آتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ لیکن اس مقام پہ اشترا کا لفظ جو ہے یہ بڑے ہی خوبصورت معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ شین را یا اس کا روٹ ہوتا ہے، شرا یشری ہوتا ہے بیچنا اور خریدنا، ٹریڈنگ کے معنوں میں، بالکل گیو اینڈ ٹیک۔ آپ کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدی نہیں بلکہ ٹریڈ کی ہے۔ ٹریڈ کرنا کیا ہوتا ہے، پچھلی گاڑی جو ہے اس کو بھی دے دیا اور کچھ پیسے اور ڈال کے نئی گاڑی لے لی۔ تو یہ لفظ ہے اشترا۔ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو سودے ہو رہے ہیں یہ صرف ون وے نہیں ہے، کچھ گیو ہے تو کچھ ٹیک ہے۔ یہ صرف گھر بیٹھ کے بات کرنے کی بات نہیں بلکہ اس میں جان اور مال دونوں کو دینے کی بات ہے۔ اب تجارت کا لفظ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بہت پرکشش لفظ ہوتا ہے۔ جو لوگ بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں ان کو تو اس کا خوب مزہ ہوتا ہی ہے، لیکن جو لوگ جابز کرتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ حسرت سے کہہ رہے ہوتے ہیں، بھئی ہم کون سے کاروبار کرتے ہیں، ہماری تو ایک لگی لپٹی آتی ہے۔ جب آپ جاب کی بات کریں، کہیں ملازمت کی بات کریں، تو ذہن میں ایک بہت لمیٹڈ سینیریو آتا ہے، ایک خاص اماؤنٹ ہے، نیٹ اماؤنٹ جو ملنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے گھر میں جا کے وہ دے دینی ہے، اسی کے مطابق زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور بڑی اسموتھ ہوتی ہے۔ ویسے جاب والے لوگ ہیں ان کی زندگی ہوتی بڑی اسموتھ ہے، پہلے سے فکر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا اور پرسوں کیا ہوگا، الا یہ کہ کوئی لے آف ہونے کا خطرہ نہ ہو، کسی بھی لمحے لے آف ہوتے ہیں۔ لیکن تجارت پیشہ لوگوں کی زندگی میں بہت فلکچویشنز آتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگلی آیتوں کو سمجھنے میں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تجارت جدھر بھی ہوتی ہے ادھر آپ دیکھیں کہ ایک دم آپ ایک ہی رات میں کروڑ بھی کما سکتے ہیں۔ کہتے ہیں موت اور گاہک کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ایک ایسا بھی ہفتہ گزر سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک پیسہ بھی نہ آئے۔ جب تجارت فلورش کرتی ہے، جب تجارت اچھی ہوتی ہے، بزنس پھیل رہا ہوتا ہے، تو ایسے دن رات مال آتا ہے کہ راتوں رات دنوں دنوں میں کہانیاں بدل جاتی ہیں، صورتحال بالکل مختلف ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب سلمپس آتے ہیں، جب مندہ پڑتا ہے، جب شیئرز گرتے ہیں، پیمنٹس نہیں ملتی، بعض دفعہ منی اسٹک بھی ہو جاتی ہے، تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ پہ ہونا ہوتا ہے۔ جیسے دنوں میں گھر اور گاڑیاں بنتی ہیں، اسی طرح پھر وہ دنوں میں چلی بھی جاتی ہیں۔ اب یہ سارا ماحول ذہن میں رکھ کے اس تجارت کو دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے ایک تجارت کرتے ہیں، ایک ڈیل ہو رہی ہے، یہ ایک بزنس ڈیل ہے۔ اللہ کی ذات ہم ناکارہ اور کمزور انسانوں کو ایک آفر دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے لفظ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، نہ اللہ کی ذات کے لیے، اس کی تو مثال جیسی بھی کسی کی مثال نہیں، کہ لئیس کمثلہ شیئن۔ لیکن صرف بات کو سمجھنے کے لیے، تاکہ یہ بات ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کو ہم دیکھیں کہ عموماً لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ چلیے امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، آپ اپنے گھر کا سامان بیچنا چاہتے ہیں، آپ گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، کیا خواہش ہوتی ہے؟ کہیں بھی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے نا، تو تین فیکٹر وہاں ضروری ہیں، یعنی تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، بیچنے والا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیلر، دوسرا ہے خریدنے والا، بائر، और तीसरी है वो चीज जो बेची जाएगी। अब इस डील में हम देख लेते हैं, एक है बेचने वाला, कौन है? कमजोर इंसान। बेचने क्या निकला है? अनफुसहुम व अमवालहुम, जान और माल बेचने निकला। अब आप इमेजिन करें, कोई बंदा कारोबार के लिए निकला और वो कहता है कि मेरी जान और माल कोई ले ले। अमूमन कारोबार करने वाले लोग तीन किस्म के होते हैं। आज आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूँ। अमूमन तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो चीज़ लेके निकले, जो पहला ग्राहक मिला कहते हैं पकड़ो और दे दो, जान छुटी, पहले ही शख्स को दिया और लेके आ गए। एक दूसरा वो होता है कहता है पहले ने तो ये कीमत लगाई है, लेट्स सी मैं देखूँ जरा कुछ और भी है। वो वेट करता है दो तीन और लोगों के आने का, थोड़े ज़्यादा लोग आ जाते हैं, एक ने एक कहा इसके मैं 50 देता हूँ, दूसरे ने कहा 60 देता हूँ, चौथे ने कहा 70 देता हूँ, फिर एक दो घंटे गुजरे कोई आया ही नहीं, इसने कहा लगता है बस 70 काफ़ी है, वो उनको दे के आ जाता है। ये दूसरी शख्सियत है। एक तीसरी पर्सनैलिटी है और वो क्या है, वो कहती खाम का पहले तो वो खुद वैल्यू करता है घर से निकलने से पहले। अब ये पॉइंट्स आप नोट करें, ये थर्ड सेलर जो है ना, ये है अक्लमंद। नंबर एक, सबसे पहले अपनी चीज़ की वैल्यू पहचानता है। अक्लमंद बिजनेसमैन चाहे वो छोटे पैमाने पे काम कर रहा है या बड़े पे, चाहे दीन के लिए कर रहा है या अपने लिए कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी दुकान में कितने का सामान पड़ा है। ये इतना बेसिक असूल है अकाउंट्स का कि जिससे आज हम मुसलमान उतने ही दूर हैं, हमें तो खुद नहीं पता होता। और मैं कभी कभी जब अपने मुल्कों के स्टोर और मार्केट्स को देख चुकी थी, तो उसके बाद जब मैं अमेरिका में गई तो मुझे बहुत शौक था, मैंने लोगों से सुना हुआ था कि डॉलर स्टोर होते हैं यहाँ, हर चीज़ डॉलर की मिलती है। अब शुरू में जाके तो बंदा वैसे ही बड़े पैसों को परेशान हो रहा था कि धनिए की गट्ठी 60 रुपए की ले रही हूँ, क्योंकि जब मैं गई थी वहाँ तो 60 रुपए का डॉलर था, ये तब की बात है। खैर बहरहाल हुआ क्या कि मुझे पता लगा कि एक डॉलर में भी यहाँ कुछ आता है चलता है। मेरे शौहर चूँकि वहाँ रहे, उनको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद भी नहीं, तो एक दिन बड़ा मेरी ख्वाहिश थी, और शुरू में मर्द आपको आता है ख्वाहिशात पूरी भी बड़ी करते हैं, ले गए मुझे। अब मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। आप देखें इतना ऑर्गेनाइज, कहीं एक तरफ अगर सारा हाउस होल्ड चीज़ें हैं तो सारी उधर वही हैं, दूसरी जगह अगर सोप्स हैं तो 10 किस्म के सोप हैं। मैं तो परेशान हो गई, मैंने कहा अगर ये हमारे मुल्कों में दुकान होती तो आपको सोप्स में से टोपियाँ निकल रही होती और सब्जी के अंदर जाके आपको सॉक्स मिलते, लेकिन कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड। फिर हमारी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही वहाँ, थी मेरे पास भी, और उनका डॉलर स्टोर था, मैंने उनके स्टोर पर जाके भी बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, और उन्होंने मुझे खुद भी बताया कि कितना वक्त हमें लगता है इसको ऑर्गेनाइज करने में और हम कितने का लाते हैं और क्या कुछ, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि जिसके पास चीज़ है ना उसको उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए, कितनी वैल्यू का सामान है। अच्छा हमारे जाती चीज़ें होती हैं ना तो हम बहुत वैल्यू करते हैं, गिन रहे होते हैं एक एक चीज़, लेकिन जब कोई चीज़ें इज्तमाइत की होती हैं या ख़ास तौर पर दीन के नाम पर होती हैं तो वो बात है कि बस माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कैफियत। तो बहरहाल अब ये शख्स जो है ये अपनी चीज़ की पहले से वैल्यू लेता है, घर से खुश होकर जा रहा होता है कि बड़ी वैल्यू वाली चीज़ है आज मेरे हाथ में। फिर दूसरी खूबी क्या होती है इस शख्स की कि मार्केट चेक करता है, चलो मेरी चीज़ तो आज इतने की है, लेट्स सी दुकान खोली है, चलो भाई छोटू तुम दुकान साफ करके बैठो, मैं ज़रा मार्केट का एक चक्कर लगा के आता हूँ। ये जाके फिर उस दिन की मार्केट चेक करता है कि आज यही चीज़ इसी से मिलती जुलती चीज़ लोग दूसरे लोग कितने की बेच रहे हैं, और ये बड़ा अहम असूल है तिजारत का। आप तो अपनी दुकान की चीज़ में कीमत रख के बैठे हैं और आपको पता ही नहीं कि साथ वाला उसी चीज़ को कितने में बेच रहा है, आप सारा दिन कहेंगे मेरे से लोग क्यों नहीं ले रहे, फलां के पास बड़ा रश है। तो लिहाजा वो मार्केट चेक करता है, इधर उधर जाता है, कर करा के फिर पूरी वैल्यूएशन करके आता है, और उसके बाद जो बेस्ट ऑफर आती है बड़ी सोच समझ के बाद वो देता है। चलिए अब ये सारी बेस बन गई, आगे चलते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ जो डील हो रही है इसमें क्या है। जब इंसान अपनी जान और अपनी माल लेके घर से निकलता है, यहाँ हमारी रासुल माल जो है ना, ये हमारी जान और हमारा माल है, और ये दोनों पैदा की अल्लाह ने, ना पैसे लिए ना किस्तें आई बच्चे के साथ कि अब इसकी आंखों का बिल दे दो, अब इसके कानों का बिल दे दो, सिर्फ बच्चे को डिलीवर करने का जो खर्चा है वही माँ बाप चुका रहे होते हैं कई साल तक। कहीं बात सुनी कि बच्चे के लिए माँ ने कहा कि बच्चे की कॉट ले लेते हैं, अब बड़ा हो रहा है, तो उसने कहा अभी तो मैं इसकी डिलीवरी की किस्तें चुका रहा हूँ, गॉड कहाँ से लेके आऊंगा। सिर्फ इंसान बच्चा डिलीवर करने के इतने पैसे दे, ये तो ऐसी है कि असल किताब आपको मिल जाए 10 रुपए की और इसको डिलीवर करने में आपके पास 100 रुपए का खर्चा आ जाए। हाँ, तो बहरहाल अब अल्लाह की रहमत देखिए, उसकी मोहब्बत देखिए, खुद पैदा करता है, उसने कोई पैसे नहीं लिए और हकीकी मालिक भी वही है, खुद ही ले ले, कोई जुबान नहीं खोल सकता। लेकिन उसकी शान देखिए कि जब हम इस दुनिया में आने के बाद अपने जान और माल के मालिक खुद को समझने लगते हैं, तो खुद ही बायर बन के मार्केट में आता है और हमें डील देता है कि लोगो मेरे साथ डील करना चाहते हो। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह मोमिनों से उनकी जाने और उनके माल खरीदना चाहता है। अब आप देखिए कि बेचने वाले इंसान जो है ना, ये 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहला शख्स जो है ना, अपनी जान और अपने माल को अपने ही हाथों बेच देता है, नफ्स के हाथों बेच देता है, कुछ जरूरत नहीं करने की, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, पिलाते रहो। दूसरा एक शख्स है जो अपनी जान और अपने माल को दूसरे लोगों के हाथों बेच के आ जाएगा, अपने ही जैसे लोग। और एक तीसरा शख्स है जो इसको अल्लाह के हाथ में बेचेगा। अब इन तीनों का हम थोड़ा थोड़ा अलग से तذکرہ देखेंगे। खुद अपने हाथों बेचने वाला कौन है? हाँ, ये वो है जो अना परस्त होता है, इगोइस्टिक होता है। ये वो शख्स है जो खुद से बड़ी मोहब्बत करता है, अना का मारा हुआ, इसको अपना बड़ा प्यारा लगता है। ये वो काम करता है जिसको इसका दिल चाहे, ये वहां काम करते हैं जहां इसकी अना की तस्कीन हो, ये वहां देता है जहां देने के बाद इसकी बड़ी तारीफ हो, ये वहां देता है कि जहां इसको देने के बाद लगे कि लोगों की नजरों में मैं बहुत हो गया, लोग मेरी तारीफ करें। लोग तारीफ ना करें तो देना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। किसी को अच्छा लगे ना लगे, ये कहता है बस मेरा ये काम है, मैं ये करता रहूंगा। और ये वो शख्स होता है कि जो बाज दफा दीन का काम भी कर रहा होता है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं कर रहा होता, अपने लिए कर रहा होता है। बड़ी खौफजदा करने वाली रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोगों से जहन्नुम की आग फ्यूल जो हो गए वो 3 लोग होंगे, कोई शराबी जानी पापी लोग नहीं होंगे, एक आलिम होगा, एक सखी होगा और एक शहीद होगा। तीनों को बारी बारी अल्लाह ताला बुला के पूछेगा तुमने क्यों इल्म हासिल किया, क्यों कुरान पढ़ा? तो उस वक्त तो झूठ बोलेगा कि अल्लाह तेरे लिए का झूठ बोलते हो, तूने इसलिए सीखा सिखाया कि लोग तुझे आलिम कहें, तुझे कारी कहें, वाह वाह कहें, सुबहान अल्लाह की बातें आए तेरे ऊपर, और वो हो गया, अब मेरे पास तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं, इसको आग में डाल दो। यही काम खर्च करने वाले के लिए, अल्लाह के लिए खर्च करने के बजाय लोगों के लिए करने वाला, शो के लिए। और तीसरा शहीद भी हो गया लेकिन आरजुओं को शहीद ना कर सका, अना को ना मार सका, खुद को मार दिया। ये है पहली किस्म का शख्स। ये शख्स जब अपने आप को अपने ही हाथों बेच देता है ना, तो उसके बाद उसको इसकी क्या कीमत मिलेगी? नफ्स मोटा होता जाएगा। सोने को दिल चाह रहा था, नहीं काम किया, आज दुकान खोली नहीं, नींद बड़ी प्यारी थी, सो गया, छुट्टी। खाने को दिल चाह रहा, खाते रहे, हलाल है कि हराम है, हू केयर्स, मेरी मर्जी। बस ये अपने अंदर घूमने वाला शख्स है, सेल्फ सेंटर्ड लोगों में से है ये शख्स। देखिए कि दीन के लिए जिंदगी लगाना और बात है और नफ्स लगाना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। आज भी हजारों लाखों लोग ऐसे मिलेंगे हमें अपने इर्द गिर्द जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीन के नाम पे लगाई हुई हैं लेकिन नफ्स नहीं लगाए हुए, अना नहीं निकली, अपना अपनी जात, अपना नाम, अपनी बात, अपना बड़ा होना, ये चीज अभी उनकी जिंदगी से निकली नहीं है। इसलिए बड़ी फिक्र की बात है, अगर आपकी जिंदगी लग रही है ना अल्लाह के रास्ते में और कुरान के लिए और दीन के लिए, तो फिर भी खुद को चेक करते रहें, अल्लाह के लिए सीख रही हूं कि अपने नफ्स के लिए सीख रही हूं? लोग मुझे के माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हो रही है, अब तो कुरान पढ़ने लग गई है और अब तो पढ़ाने भी लग गई है। अगर कोई इसके लिए जिंदगी लगा रहा है ना, तो अफसोस है उसके ऊपर। ये वही शख्स है जो खुद ही आईने में अपने आप को देखकर खुश हो रहा है। दूसरी किस्म का जो इंसान है ना, वो अपने सौदे को लोगों के लिए बेचता है। ये कौन है? पीपल प्लीजर, लोगों को खुश रखने वाला। पहला, खुद को खुश ज्यादा रखता है, उसको ये भी परवाह नहीं होती कि जो मेरा लाइफस्टाइल है ना, उससे लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। अब देखिए, लोग बेकार हुलिये में शराब की बोतल हाथ में लेके भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। उनको नहीं परवाह कि हम सोसाइटी में कितने गंदे लग रहे हैं, लोग हमसे नफरत कर रहे हैं, चोर, डाकू, लुटेरे, खुद के लिए जी रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा शख्स है ना, ये कौन होता है जो लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को लगाता है? अब इसकी सारी कोशिशों का रुख क्या है कि लोग खुश हो जाए, बस लोग मेरे से खुश हों। इवन ये बास दफा अपने ऊपर सितम कर लेता है, नींद बर्बाद, सारा पैसा लगा देता है लोगों पे सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे से खुश हों। ये अपनी जान माल खपाता रहता है लोगों पे, बड़ी बड़ी दावतें करेगा, लेकिन उसमें अत-ए-मुत्ताम की खूबी नहीं है। या युत-ए-मून अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में नहीं खिलाता वो, इसलिए खिलाता है कि एक दफा खबर फैल जाए कि फलां का हाथ बड़ा खुला है। वो तो बड़ी दावतें करते हैं, हम जब उनके घर जाते हैं तो बस वो तो एक लंबा दस्तरखान खोल देते हैं। ये ऐसा शख्स है, ऐसे शख्स के लिए फिक्र की बात है, इसने अपने सौदे को बड़ा सस्ता बेच दिया। अच्छा, जो ऐसा करता है ना, लोग जरूरी तो नहीं कि उससे खुश हों। वक्ती तौर पे खुश होंगे, बाद में नाराज भी हो जाएंगे, इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। पहले हम तीसरे शख्स को भी देख लें। तीसरा शख्स वो कहता है, नहीं, मैंने खुद के हाथों बेच के क्या करना, ये ऐसे ही कि आपकी अपनी दुकान की कोई बड़ी चीज प्यारी लगे आपके, मैं खुद ही ले लूं, खुद ही पहन लूं, खुद ही खा लूं, फिर बाद में सोचें, छोड़ो मैंने खाई तो मुझे क्या मिला, ये बिक जाएगी तो इसकी इतनी कदर है। ये पहला शख्स भी बेकार है। दूसरा है, वो कहता है कोई आ गया, चलो इसको ऐसे ही पकड़ के मुफ्त में दे दूं, कोई हर्ज नहीं, ये कहेगा बड़े सखी हैं, बड़ा इनका दिल खुला है। ये दूसरी दर्जे पे है। लेकिन एक तीसरा शख्स है, वो कहता है, नहीं, मुझे अपने माल को जाया नहीं करना, ना मैंने खुद को देना है ना लोगों को देना है, बल्कि मैंने अपने रब को देना है। ये मेरी जान मेरे पास भी रही तो 60-70 साल के बाद तो खत्म होनी है। लोगों को खुश करने के लिए जान लगा दूंगा, खुश होंगे नहीं होंगे, लाओ मैं अपनी ये जान अल्लाह के रास्ते में लगा दूं, खपा दूं। फिर वो अपनी जान की कीमत लेके फिरता है, कोई इस चीज को कबूल कर ले, मैं बड़ी कमजोर हूं, मेरे जिस्म में बड़ी गंदगियां हैं, बड़ी कमजोरियां हैं, मेरा जिस्म दुखा हुआ है, मेरी हड्डियों में दर्द है, मेरा जिस्म का एक एक अंग टूटा हुआ है, लेकिन इस टूटी चीज की कदर करेगा तो रब करेगा। और इस तरह वो अपनी जान अल्लाह के आगे लगा देता है। और जान लगाने में वक्त लगाना, ख्वाहिशात लगाना, तमन्नाएं लगाना, पसंद नापसंद को अल्लाह के लिए करना, ये सब आ जाता है। और फिर साथ ही साथ माल लगते हैं, अम्वालहुम, वो अपने माल को अपनी जात पे सबसे कम लगाता है, वो सबसे सस्ती चीज अपने लिए लेता है। वो ये नहीं कहता क्या हरज है कमाते है इसलिए कि खाओ खिलाओ, बच्चों को ले गए बाहर 1,000 का खाना खा लिया, वो कहता छोड़ो इस खाने का 5-6 घंटे के बाद इंजाम तो टॉयलेट ही है ना, सोच के खाता है। वो अपनी जान पे नहीं लगा रहा होता अपनी कमाइयों को, उसके सारे अरमान बच्चों की शादियों पे नहीं पूरे होते। वो कहता नहीं, अनफुसहुम, जान पे और माल भी लगाना है तो सोच के लगाओ। यहां याद कीजिए वो वाक्या हजरत उस्मान गनी का, दोहरा देती हूँ शायद किसी को फायदा हो जाए, कि अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है और कहता है कि अल्लाह के नबी कुछ जरूरत है, आपके पास कुछ भी नहीं था देने को, तो आप किसी और की तरफ रेफर करते थे। आपने कहा वहां चले जाओ, वो उस्मान का घर है, जरूर कुछ देंगे, सवाल करना, और चला गया। अभी करीब गया कि घर से झगड़े की आवाजें आ रही हैं, पता चला उस्मान अपनी बीवी से नाराज हो रहे हैं, जब एक चिराग से काम चल सकता था तो दो क्यों चलाए हुए, आज की जुबान में आप कह लें कि जब एक बल्ब से काम हो सकता था तो दो क्यों जलाए। बस ये बात सुन के हिम्मत ही ना हुई, जो शख्स इतने थोड़े दिल के नाउज़ुबिल्लाह कि अपनी बीवी से झगड़े मुझे क्या देगा, बगैर मांगे वापस अल्लाह के नबी के पास आ गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने नहीं मांगा, मुझे लग रहा है मुझे नहीं मिलेगा। कहा नहीं, जाओ मांगो। फिर गए और अब नौकिया तो उस्मान गनी आ गए। कहा अल्लाह के लिए कुछ चाहिए, नबी ने भेजा है आपके पास। कहा अच्छा रुको भी आता हूँ। और गए और सोने की अशरफियों की थैली, गोल्ड क्वाइंस, बिस्किट जिसको अपनी जुबान में कह लें 24 कैरेट, और ला के दे दिया। अब तो वो शख्स न रह सका। कहने लगा, मुझे ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप एक बल्ब के जलाने पे झगड़ रहे थे और अभी मैंने मांगा और आपने इतना कुछ दिया। कहा, हाँ अब तूने सुनी लिया है तो फिर समझ कि अगर वो बल्ब जलता तो वो मेरे नाम पे पड़ता, उसका हिसाब मुझे देना पड़ता, ये मेरी जात है। और अब ये जो मैं दे रहा हूं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम, ये अल्लाह के नाम पे जा रहा है। आज हम सबसे ज्यादा खुले दिल के होते हैं तो अपनी जात पे, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी लगाते हैं, बेकार कॉल्स करते रहते हैं। क्या आरज 1 करोड़ की कॉल है, आपको पता है 1 करोड़ कितना बड़ा होता है? आज भी आपके मुल्क में 1 करोड़ की 2-3 रोटियां आ सकती हैं इस महंगाई के दौर में, इसलिए अपनी जात पे कम लगाए इंसान। आपको पता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है कि खिलाफत के दौर में उनकी बीवी ने थोड़े पैसे बचाए जो इनको खर्चा मिलता था, थोड़े थोड़े बचाए और एक दिन मीठा पका लिया। इनके बारे में भी आता है और गालिबन उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी आता है कि इनको मीठा पसंद है। अब ख्याल क्या था बीवी का, कि बहुत खुश होंगे मियाँ कि बीवी बड़ी सुघड़ मिली है, पैसे बचा लिए। कहा, ये कहाँ से आए? कहा, वो थोड़े थोड़े पैसे बचा के जमा किए थे। कहा, अच्छा इसका मतलब कि इतने थोड़ों में गुजारा हो सकता है, अगले महीने से उतने और कम ले लिए। कभी सोचे तो सही, हमें तो ये पैसा बहुत बड़ी चीज लगता है ना, जब अल्लाह के रास्ते में देना पड़ता है फिर तो कहते हैं अभी हिम्मत ही ना करो, तौबा तौबा ये कैसे होगा। कभी सोचें हम अल्लाह के नाम पे पैसा निकालने लगे या कोई चीज लेने लगे, क्या वही ख्याल आता है जो अपने नाम पे लेते हुए आता है? तब तो हम एक होते हैं। अल्लाह के नाम पे कुछ लेने के लिए तो हम हजारों हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, लेकिन हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत ही नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते इसको। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह पे नजरें होती हैं, वो कहते हैं क्या बात, ये है असल में क्रीम पीपल, गैर मामूली लोग, एक्सेप्शनल केसेस। इसमें सबसे पहले किनका दर्जा आता है? कौन है ऐसे लोग आप कहेंगे किधर हैं? यकीन करें बड़े रेयर होते हैं, इतने थोड़े होते हैं कि चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलते। आप देखिए कि ये इतने जीनियस लोग होते हैं, ये इतने दूर देखने वाले होते हैं कि आम लोग इनको कामयाब ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाए उन लोगों की तरह जैसे ईमान लाए बेवकूफ, अनो मिनु कमा आमन सुफहा। इनको ये बेवकूफ लगते हैं क्योंकि इनके इंटेलेक्चुअल को ये पहुंच ही नहीं पाते। ये इसकी छोटी सी मिसाल है कि माँ और बाप जिस तरह सोच समझ के घर की चीजें खरीद रहे होते हैं, छोटे बच्चे को नहीं समझ आती उसके ख्याल में पैसे का बेहतरीन मसरफ क्या है, कैंडीज, चॉकलेट, आइसक्रीम, फनप्लेक्स, चकी चीज। हाँ बच्चे को पूछे ना कि 1 लाख रुपया दे के अबू ने गाड़ी ली या कोई और ऐसी चीज ली जिसमें बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं, गाड़ी में तो बहुत इंटरेस्ट होता है, ये मेरी मिसाल तो बड़ी इनवैलिड है आज के दौर में। लेकिन कोई ऐसी चीज जो घर में जरूरत की हो बाप और माँ ले आए तो बच्चा कहेगा ना समझ है। बिल्कुल याद रखिए, इतने ज्यादा बड़े सौदे करने वालों को लोग समझ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता ये कर क्या रहे हैं। क्यों लोग अल्लाह के नबी के बारे में आके पूछा करते थे अबू तालिब को कि तुम्हारे भतीजे को हो क्या गया है, ये सरदार बनना चाहता है, ये किसी बड़ी खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता है, इसको हो क्या गया, ये बाप दादा की रिवायतों से टकरा रहा है, ये कौन सा नया दीन लेकर आ गया है, डॉक्टर्स को बुला लिया, हकीमों को बुला लिया, इलाज करो इसका, मत मारी गई इनकी। आज भी जब कोई इस तरह चलता है दीन की तरफ तो लोग कहते हैं मत मारी गई इनकी, जो अपना सौदान देखे रब के साथ करता है लोग उसको बेवकूफ कहते हैं, क्योंकि रब दिख जो नहीं रहा होता, रब के हाथ में एक चेकबुक जो नहीं दिख रही होती, बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट्स जो नहीं दिख रही होती, तो लोग इसको समझ नहीं पाते और लोग कहते हैं ये बेवकूफी है, मत दो। दुनिया की जन्नत देख लो, वो कौन सी जन्नत है कि बिअन्न लहुमुल जन्ना, अनदेखी जन्नत, उधार पे कौन एतबार करे, किसने देना है किसने देखा, आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली कैफियत, आओ इसी दुनिया को जन्नत बनाओ, अपने घर को जन्नत बना लो जितना मर्जी लगा दो, अपनी सवारियों को जन्नत नुमा सवारियां बना लो जितनी मर्जी बना लो, अपने बर्तन सोने चांदी के बना लो, कोई हरज की बात नहीं। और फिर इंसान खौफ खाता है, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। अब यहां आप देखिए कि ये तो सौदा करने वाले थे ना, लेकिन कुछ गलत फहमियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये तीसरे दर्जे पे पहुंच नहीं पाते। मैं चाहती हूं कि ये गलत फहमियां भी दूर कर लें ताकि कुछ और लोग इस सौदे में शामिल हो जाएं, ये थोड़े लोग ज्यादा हो जाएं। कुछ जहन में कंफ्यूजन्स आती हैं। एक कंफ्यूजन क्या है कि जिसने एक दफा अपनी जान और माल का सौदा अल्लाह के साथ कर लिया, गोया कैसे लगा ना कि बेच दिया, अब हर चीज उसके नफ्स के खिलाफ होगी। जहन में ये आता है, आसान लफ्जों में ये कह लें कि आज के दौर में एक मिसकंसेप्शन हो गई कि जो दीन पे आ जाता है उसकी जिंदगी तो वीरान, हंस नहीं सकता, खुश नहीं हो सकता, खा नहीं सकता, पा नहीं सकता। लोगों को ये गलत फहमी हुई कि नहीं बनी, अभी तो हम अपना नफ्स नहीं मार सकते, सॉरी अभी तैयार नहीं। अब हुआ क्या कि जब ये सोच आई ना कि नफ्स को अल्लाह के हाथ बेचने का मतलब क्या है कि नफ्स खुशी, अब इससे एक गलत नजरिया शुरू हो गया जिसको आज के दौर में हम रहबानियत कहते हैं। इसी से इब्तदाई उन्होंने कहा नहीं, रब को खुश करना है तो हर वो चीज जिंदगी से निकालो जो नफ्स को प्यारी लगती है। नफ्स चाहता है शादी, हम नहीं करेंगे, मुजरद रहेंगे। नफ्स कहता है खाओ पियो, हम नहीं खाएंगे, पत्ते खाएंगे दरख्तों के। नफ्स कहता है सो जाओ, हम कहते हैं हम नहीं सोएंगे। अब हुआ क्या कि लोगों ने तसव्वुफ के नाम पे, चिल्ले कशी के नाम पे क्या क्या कहानियां खोली। इसकी तफसील आप सुनना चाहें तो सूरत सफ की आखिरी आयतों में जाके सुन लें, बड़ी डिटेल से हमने उसमें बात की हुई है कि कहाँ से ये शुरू हुई। हालांकि हकीकत है कि ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में किसी रहबानियत का कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वाली नफसी का अलई का हक्कन, तेरे नफ्स का तुझ पर हक है, तेरी बीवी का तुझ पर हक है, तेरे मेहमान का तुझ पर हक है, हर हक वाले को हक दो। आप देखिए कि नफ्स को अल्लाह के आगे बेचने वाले के लिए ये हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं है कि वो अपने हक वालों के हक ना दे। सिर्फ मामला मसला क्या है कि जब हम इन चीजों को अल्लाह का भी हक देने लगते हैं, आप अपने आप को ना हक दें, अपनी अपने जिस्म को आराम दें, लेकिन जब आराम दे माहौल आपको इबादत से रोक ले तो समझ लें कि आपने नफ्स का हक नहीं बल्कि अल्लाह का हक भी नफ्स को दे दिया। आप रिश्तेदारों को हक दें, लेकिन किसका हक दें, सिर्फ रिश्तेदारों का हक दें, अल्लाह का भी ना दे दें, और कुछ खुशी नहीं होते जब तक उनको अल्लाह का हक ना दे दें। इसी सूरत की अगली आयतों में ये बात भी आने वाली है। एक सहाबी जो गजवे तबूक से पीछे रह गए थे, उनकी वजह पता क्या थी पीछे रहने की, कहते मेरे खानदान के लोग जमा हुए थे, मेरे घर मेहमान बहुत थे, तो मैंने सोचा अब सारी फैमिली जमा हुई है तो अब क्या तबूक पे जाना। हलाल बिन उमैया, आज हमारा हाल कोई इससे मुख्तलिफ तो नहीं है, आज बेटी आई हुई है, आज नंद आई हुई है, आज खाला पास है, आज मामू पास है, और अब तो सारा खानदान जमा है, सब कुछ है, लेकिन मेहमान कहा कि वज़ौरी का अलैहि का हक्कन, उसका हक है। तो लिहाजा इस्लाम क्या चाहता है कि जब तुम अल्लाह से सौदेबाजी करो तो हर एक को उसका हक दो। आप देखिए एक गोल्डन सेइंग लिख लें, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो नफ्स चाहता है ना अल्लाह भी वही चाहता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह ने जो शरीयत दी है ना हमें, ये बिल्कुल हमारी फितरत के मुताबिक है। नफ्स चाहता है कमाओ, अल्लाह ताला कहता है चलो उठो कमाओ। अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। एक रिवायत में आता है कि सच्चा ताजिर कल अंबिया कराम के साथ होगा, कोई मना नहीं, कमाना भी इबादत है। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक कमाएं, अगर उसके अंदर फिर शैतान के रखने आते हैं तो उसको निकालते जाएं। आप कहते हैं शादी को दिल चाह रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं बिल्कुल करो। अल्लाह के नबी से कैद कहलवा दिया कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरी सुन्नत है। आप कहते हैं माँ बाप भी हैं, उनका भी ख्याल रखना है, कहा बिल्कुल जाओ, वबिल वालिदैन एहसाना, वालदैन पे एहसान करो। आप कहते हैं शोहर को खुश रखना है, बीवी को खुश रखना है, दोनों तरफ है, कहा बिल्कुल जाओ, अल्लाह ने तो इसमें सुकून रख दिया। वमिन आयातिही, ये तो अल्लाह की निशानी है। सूरह रोम में कहां अल्लाह ताला हमें रोकता है। याद रखिए कि अल्लाह को राजी करने का मतलब ये नहीं कि बंदा नफ्स को नाराज करे। हदीस में आता है कि मोमिन की मिसाल तो उम्मे मूसा जैसी है, अपने ही बच्चे को दूध पिलाए और पैसे भी पाए, उजरत मिलती थी उसको फिरौन से। آج بندہ مومن جب اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے نا تو وہ خود بھی بڑا خوش رہتا ہے. ہاں اس بات کا صرف مطلب جو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ بندگی میں ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ پھر نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے, تو پھر بندہ اللہ کو راضی کرے. جہاں جنگ ہوگی نا, جہاں تقابل ہوگا نفس کا اور اللہ کا کے راستے کا, پھر نفس کو پیچھے کرنا ہے, پھر لوگوں کو پیچھے کرنا ہے. دیکھیے ایک ایمان والے کی زندگی میں دو مقام آ سکتے ہیں اور ایک مقام کبھی نہیں آ سکتا, اور یہ تین سچویشنز ہی ایسی ہیں جس میں سے ہم میں سے ہر وقت کسی نہ کسی سے ہم الجھ رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کی زندگی میں تین مقام اکثر رہتے ہیں. نمبر ایک, وہ خود بھی راضی اور اللہ بھی اس سے راضی. دوسرا مقام جو کسی بھی انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے, خود تو نہیں راضی, خود تو تکلیف میں ہے لیکن اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور تیسرا ایک مقام ہوتا ہے کہ بندہ تو راضی رہے, بندہ تو بڑا خوش ہے لیکن اللہ اس سے ناراض ہے. اب ان تین مقامات میں سے پہلے دو مقام, یعنی بندہ خود بھی راضی رہے خوش رہے اور اللہ بھی اس سے خوش رہے, یہ مقام بندہ مومن کی زندگی میں اکثر رہتا ہے. یہ وہ ٹھنڈک ہے, یہ عبادت کی لذت ہے, یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے آتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوشیاں مناؤ غم نہ کرو. بندہ مومن کی زندگی تو ٹینشن فری زندگی ہوتی ہے, سچی خوشیاں تو اس کے پاس ہیں. کسی کا قول ہے کہ رات کے یعنی عبادت گزاروں کے دلوں میں جو ٹھنڈک ہے, اگر بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے تو فوجیں لے کے جائیں اور ان کے دل کی دنیا کو اجاڑ کے آ جائیں. عبادت کی لذت, اللہ کے راستے کی خرچ کی لذت, اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کی لذت سے چھوٹی بات ہے. دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والا خود نہ خوش ہو؟ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ شہید کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ مانگو, کچھ دینا چاہتا ہوں, اللہ اور کیا مانگے, اتنا کچھ تو مل گیا, جنت ہماری, کھاتے پیتے چرتے چگتے رات کو جا کے تیرے عرش کے نیچے کندیلوں میں سو جاتے ہیں, اتنے پیارے پنجرے, اتنا کچھ ملا. کہا نہیں کچھ مانگو, بڑا پیار آ رہا مجھے تم پہ, تم نے اپنی زندگیاں کھپا دی میرے راستے میں. کہا اچھا کچھ دینا ہے, تو اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج اور پھر تیرے راستے میں جان دے اور وہ لذت پائیں جو چھری گردن پہ چلتے وقت پڑی تھی, تیر لگا تھا جو لذت ملی تھی وہ چاہتے ہیں پانا, وہ ٹھنڈک نہیں دوبارہ مل رہی. حدیث میں آتا ہے جیسے چونٹی کاٹتی ہے اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے مومن کو. ایک صحابی ہے, لوگوں نے اتنے ظلم کے ساتھ مارا اور تیر ان کی شاہ رگ پہ لگا اور جو لفظ آخری ان کی زبان سے تھے نکلے وہ کیا تھے, فزتُ بربی کعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ لذت ایسے تھوڑی ملتی ہے, یہ کب ملتی ہے؟ جب بندہ صحیح معنوں میں اللہ کو اپنا سمجھ لے, اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کھپائے,